आवाज सुन राधे भागा दिनकर जी के पास चला आया। पास आते ही दिनकर जी ने हैरान होते पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? राधे ऊपर की ओर इशारा करते, वो अयांश बाबा। दिनकर जी परेशान होते, क्या हुआ अंशु को? तो राधे उनको अयांश को तेज बुखार है वाली बात बता देता है और आरवी उसे ठंडे पानी की पट्टियां कर रही है ये भी। राधे की बात सुन दिनकर जी और ज्यादा परेशान हो गए और चलो कहते राधे के साथ ऊपर अयांश के रूम में चले आए। जैसे ही रूम में आए तो देखा आरवी ने अयांश के माथे पर गीला रूमाल रखा हुआ था और अयांश के हाथ पर इंजेक्शन लगा रही थी। दिनकर जी आगे बढ़ते, अंशु कैसा है आरवी बेटा? ये सुन आरवी ने उनकी ओर फट से देखा, दादू आप? तभी राधे बोल पड़ा, मालिक को बता दिया मैंने। दिनकर जी बेड की दूसरी साइड से अयांश के पास बैठते हुए, बताओ ना कैसी है अब तबीयत अंशु की? आरवी इंजेक्शन देकर फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर बेड के टेबल पर रखते हुए, लगातार ठंडे पानी की पट्टियां करने से बुखार कम हो गया है दादू, इंजेक्शन दे दिया है, जल्द ठीक हो जाएंगे। दिनकर जी अयांश के सिर पर हाथ फेरते, हुआ कैसे बुखार, ये तो कभी बीमार नहीं पड़ता। आरवी अयांश के माथे पर फिर ठंडे पानी की पट्टी चेंज कर रखते हुए, हमारी वजह से बीमार पड़े हैं दादू, आज हमारे कहने पर ये सुबह बारिश में भीगे ना, तो उस वजह से इन्हें बुखार आ गया। ये सुन दिनकर जी और राधे दोनों एक दूजे की ओर देख आरवी की ओर देखने लगे, जो कि अयांश की ओर ही देख रही थी और उसके चेहरे पर अयांश के प्रति फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। तभी राधे बोला, बर्फ और लेकर आऊं? ये सुन आरवी बाउल की ओर देखती है, नहीं बर्फ वाला पानी है अभी। राधे भैया आप ना जल्दी से हल्दी वाला दूध ले आइए, हल्दी वाला दूध अच्छा होता है, उसमें दवा मिलाकर भी पिला देंगे इनको तो और भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, शायद बुखार फिर ना आए इनको। अभी लाया बोल राधे वहां से भाग कर चला गया। आरवी ने पास पड़ा थर्मामीटर उठाया और अयांश के मुंह में दे दिया और उसकी पट्टी बदलने लगी। दिनकर जी वहीं बैठे कभी अयांश को तो कभी आरवी को देख रहे थे। आरवी को अयांश का ख्याल रखते देखो मन ही मन खुद से बोले, आप बहुत लकी हैं अंशु बेटा, जो आपकी आरवी जैसी पत्नी मिली है। देखिए तो आपका कैसे ख्याल रख रही हैं, छोटे बच्चे की जैसे परवाह की जाती है, जैसे प्यार दुलार कर संभाला जाता है, ठीक वैसे ही संभाल रही हैं आपको। ये कहते दिनकर जी की आंखें नम हो गईं। तभी आरवी थर्मामीटर अयांश के मुंह से निकालती है और उसे देख जोर से बोल पड़ी, यस। दिनकर जी क्या हुआ? 104 डिग्री बुखार था दादू, अब ठीक है, 97 डिग्री है, नॉर्मल है अब, डरने वाली कोई बात नहीं है, बुखार अभी उतर चुका है, इंजेक्शन दे दिया है, दवा और दे देंगे ताकि फिर से फीवर ना आए, और ये सब इनके उठने से पहले ही कर देंगे हम, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, आरवी मुस्कुराते हुए बोली। ये सुन दिनकर जी हाँ में सिर हिला देते हैं और हाथ बढ़ाकर आरवी के सिर पर अपना स्नेह भरा हाथ रख देते हैं। आप ही हैं जो ये सब कर सकती हैं, वरना कहाँ ये किसी की सुने, आप तो हमारे अंशु के साथ हमें चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जानते हैं हम आप हमारे पोते का अच्छे से ख्याल रख सकती हो, रख सकते हैं दादू, आपके जिद्दी पोते का हम अच्छे से ख्याल, जो मुश्किल नहीं पर आसान भी नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है, बुखार में तप रहे थे फिर भी हीरो बन रहे थे, कुछ नहीं हुआ मुझे, फीवर को सिर दर्द के जैसे ले रहे थे, कॉफी पियेंगे और ठीक हो जाएंगे, बहुत टेढ़ी खीर है दादू ये। ये सुन दिनकर जी मुस्कुरा दिए, जानता हूँ। तभी राधे आ गया, उसके एक हाथ में ट्रे थी जिसमें दो कटोरियों में हल्दी वाला दूध और एक चम्मच रखा हुआ था, तो दूजे में आरवी का बैग। राधे आरवी की ओर उसका बैग बढ़ाते, फोन बज रहा है, आरवी बैग लेकर वहीं बेड पर छोड़ देती है, फोन को छोड़िए दूध दीजिए। जी, कह राधे ने ट्रे को आरवी को पकड़ा दी। आरवी ट्रे की ओर देखते, आप कटोरी में दूध लेकर आए हैं और चम्मच भी? राधे अयांश की ओर देखते, आसानी होगी ना पिलाने में अयांश बाबा को, गिलास में गर्म लगता, दो कटोरियों में लाया हूँ, ठंडा जल्दी हो जाएगा और चम्मच से आसानी से पिला देंगे। ये तो है, देखा दादू राधे भैया कितना प्यार करते हैं अपने अयांश बाबा से। देखा, दिनकर जी राधे की ओर देख बोले, तो राधे मुस्कुरा दिया। तभी आरवी अयांश से बोली, आप भी देख लीजिए, आप जिसे फटकारते रहते हैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं। राधे, ऐसा नहीं है, गलती पर डांटते हैं वरना कुछ नहीं कहते हमें अयांश बाबा। ये सुन आरवी हंसती, आप ना सच में पक्के वाले भक्त हैं अपने अयांश बाबा के। अच्छा, हमें वो दवाइयों वाला डिब्बा दीजिए। राधे ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर आरवी को दे दिया। आरवी ने मेडिसिन निकाली और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध रखकर उसमें मेडिसिन घोल ली और दिनकर जी और राधे की मदद से उसे पिला दी। अयांश का सिर वापस पिलो पर रखते हुए, मिस्टर मेहरा, छोटे बच्चों जैसा ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है मुझे आपका, दवाई कड़वी ना लगे इसलिए दूध में घोलकर पिला रहे हैं आपको। ये सुन दिनकर जी और राधे दोनों मुस्कुरा दिए। आरवी का फोन लगातार बजे जा रहा था। आरवी अपने बैग की ओर देखते, कौन इतने फोन कर रहा है, पति की सेवा भी नहीं करने दे रहा। दिनकर जी, फोन देख लो आरवी बेटा, ये हल्दी वाला दूध हम अंशु को पिला देंगे, राधे मदद कर देगा। राधे, हाँ बहुत देर से बज रहा है, ठीक है आइए राधे भैया, बोल आरवी बेड से उठ गई और दिनकर जी राधे की मदद कर अयांश को दूध पिलाने लगे। राधे ने अयांश का सिर थोड़ा ऊपर उठा लिया और दिनकर जी चम्मच से उसे दूध पिलाने लगे। आरवी बैग से फोन निकालते मुस्कुरा दी, दादू सौभाग्य देखिए अपना, अपने हाथों से पोते को दूध पिलाने का मौका मिल रहा है, उस पोते को जो अब बच्चा नहीं है। दिनकर जी, हमारे लिए तो बच्चा ही है ना। राधे, मालिक, अयांश बाबा जब छोटे थे तब आपने ऐसे दूध पिलाया होगा ना अयांश बाबा को, दूध भी पिलाया है और खाना भी खिलाया है, कभी जागते को तो कभी सोते हुए को। दिनकर जी मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर से जी लीजिए दादू इस पल को, फिर से आपके हिस्से आया है, बोल आरवी ने फोन की ओर नजर डाली। उसकी आंखें फैल गईं, वो मन ही मन खुद से, वर्तिका अभी विनीत जी के इतने सारे कॉल। आरवी ने साइड होकर विनीत को कॉल लगाया। दो रिंग जाते ही विनीत ने कॉल उठा लिया। आरवी, कहाँ हो तुम,
फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? कब से फोन कर रहे हैं हम सब, किसी का कॉल नहीं ले रही हो तुम? क्या कोई फोन नहीं उठा रहा? ना आयांश, ना तुम, ना दादू और ना लैंडलाइन पर राधे। वहाँ भी किया, सब जगह कॉल किए मैंने। सब ठीक है ना? विनीत एक ही सांस में बोले जा रहा था। उसने आरवी को बोलने का मौका तक न दिया। मौका मिले इसकी तलाश में आरवी अपना सिर खुजाने लगी। विनीत अपनी बात कहकर जोर से बोला, बोलो आरवी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। बोलने दे तब बोलू ना विनीत जी, आप ही बोले जा रहे हैं। बोलने की रेल आपकी पटरी से उतरे तो मैं मेरी रेल पटरी पर लाऊं ना। खैर सब ठीक है, मैंने कॉल नहीं उठाया, वो मैं बिजी थी। मिस्टर मेहरा अपना फोन साइलेंट रखते हैं ना, तो शायद साइलेंट होगा उनका फोन। और दादू का फोन शायद उनके कमरे में है, और दादू कमरे से बाहर। और लैंडलाइन, एक मिनट। राधे भैया, घर का फोन चल नहीं रहा क्या? नहीं चल रहा, आज शाम को मालिक ने गिरा दिया था। बोलते राधे ने दिनकर जी की ओर देखा, जो उसे घूर रहे थे। घूरता पाकर राधे चुप हो गया और उसने अपनी नजरें झुका ली दिनकर जी आरवी से। हाथ लग गया था बेटा तो गिर गया, कल ठीक हो जाएगा। ओके बोल आरवी ने फिर फोन को कान पर लगाया। लैंडलाइन खराब है विनीत जी। ओ अच्छा, आयांश कहाँ है? वो घर से निकल गया ना, विनीत ने पूछा तो आरवी आयांश की ओर देखते बोली। नहीं, विनीत चौंकते हुए, नहीं आयांश अभी तक घर पर है। वो घर पर क्या कर रहा है आरवी? होटल में मीटिंग है उसकी, लंदन वाले क्लाइंट के साथ। दी और तरुण होटल जाने के लिए आयांश हाँ भीट कर रहे हैं यहाँ। एक घंटा रहा है मीटिंग का टाइम होने में और आयांश अभी तक घर पर है। भूल तो नहीं गया मीटिंग को? फोन दो उसे, कब ऑफिस आएगा, कब होटल जाएगा, जल्दी फोन दो। आज से पहले तो आयांश ने ऐसा कभी नहीं किया, सब याद रहता है उसे। इम्पोर्टेंट मीटिंग और वो लेट, बात करवाओ जल्दी मेरी। अगर वो घर से सीधा होटल जाने वाला है तो मैं दी और तरुण को बोल देता हूँ निकल जाए यहाँ से होटल के लिए, आयांश होटल में ही मिल जाएगा। विनीत जौं जौं बोले जा रहा था, आरवी के चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही थी। वो जहाँ थी वहीं जम सी गई, ना हिल पा रही थी ना ही कुछ बोल पा रही थी, मानो पैरों तले जमीन खिसकते।
उसकी जुबान किसी ने काट ली, बिजली का जोर से झटका लगा हो उसे, जिसके चलते पलके झपकना भी बंद हो गई। आरवी की तरफ से रिस्पॉन्स ना पाकर विनीत जोर से बोला, आरवी सुन रही हो ना तुम? विनीत के जोर से बोलने पर आरवी की तंद्रा टूटी और वो होश में आई। उसने फट से आयांश की ओर देखा और जोर से बोली, मर गए? ये सुन दिनकर जी, राधे ही नहीं, फोन की दूसरी ओर बैठा विनीत भी हैरान हो गया। आरवी आयांश की ओर भागी, उसने अपना फोन बेड पर फेंका और बेड पर चढ़ गई। हटिए राधे भैया, ये कहते ही राधे ट्रे लिए बेड से उठ गया। दादू दूध पिलाने का टाइम नहीं, इनको जगाने का टाइम है। आयांश के सामने बैठ उसका चेहरा हाथों में भर उसे हिलाते हुए, मिस्टर मेहरा उठिए, जागिए, आंखें खोलिए जल्दी, बहुत सोलिए, अब और नहीं, अब तो बुखार भी चला गया, आप ठीक हो, उठिए, आपको ऑफिस जाना है, मेरा मतलब होटल जाना है, लंदन वाले क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग है, आप सो नहीं सकते अब, सुन रहे हैं ना? बर्फ वाले बाउल से पानी लेकर छींटे आयांश के मुंह पर मारते हुए, उठिए ना, प्लीज उठ जाएं, इम्पोर्टेंट मीटिंग, आपकी डील होने वाली है, हम तो भूल गए पर आपको तो याद है ना, जाग जाइए। दादू उठाइए इन्हें, हमारे ध्यान में ना रहा इनकी मीटिंग का, आपको पता है ना कितनी जरूरी है मीटिंग और इनका होटल जाना, लंदन वाले क्लाइंट राह देख रहे हैं इनकी, ये नहीं गए तो गड़बड़ हो जाएगी। मिस्टर मेहरा उठिए प्लीज, आप कुंभकर्ण थोड़ी हैं, उठिए ना। आरवी, दिनकर जी और राधे तीनों ने आयांश को उठाने की पूरी कोशिश की पर वो नहीं उठा। ये देख तीनों ने अपना माथा पीट लिया और एक दूजे की ओर परेशान हैरान भरी नज़र से देखने लगे। वहीं विनीत को आरवी की बातें सुनकर ही शॉक लग चुका था। वो आरवी आरवी बोले जा रहा था पर आरवी की तरफ से रिस्पॉन्स ना आता पाकर उसने फ़ोन कटकर फिर से आरवी को फ़ोन लगाया। फिर विनीत का फ़ोन देख आरवी ने कॉल रिसीव किया और आयांश की ओर देख मासूमियत से बोली, विनीत जी मिस्टर मेहरा उठ नहीं रहे हैं। उठ क्यों नहीं रहा है? ये कौन सा सोने का टाइम है और इस टाइम तो आयांश कभी नहीं सोता, ना ही इतनी गहरी नींद सोता है, आज कैसे सो गया? विनीत एक ही सांस में परेशानी भरे लहजे में बोला, इंजेक्शन और दवाइयों की वजह से। आरवी मुंह बनाते बोली, क्या? हाँ विनीत जी, कहते आरवी ने विनीत को आयांश के बुखार वाली बात विनीत को बताई और उसने उसे इंजेक्शन और दवा भी दी है। हमने कोशिश कर ली विनीत जी मिस्टर मेहरा को उठाने को पर ये जाग ही नहीं रहे हैं। जगाओ आरवी, कैसे भी करके आयांश को। कैसे जगाएं? आरवी बेचारगी भरी नजरों से दिनकर जी और राधे की ओर देखते बोली, जो कि परेशान से दिखाई पड़ रहे थे। कुछ भी करो पर उठाओ उसे, आज मीटिंग ना हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आरवी, गड़बड़ तो हो गई, अब कौन बचाएगा मुझे डेविल कुमार से? बोलते आरवी ने थूक निकल लिया क्रमशः।